आज की दो बातें, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा, सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद। पिछले चंद दिनों से शायख के बताए हुए इस्लाह के नुस्खे पे गुफ्तगू हो रही है, और ये इस्लाह का नुस्खा चार चीजों में कमी करना। किल्लते ताम, खाने पीने में कमी कर। किल्लते कलाम, गुफ्तगू में कमी करना। किल्लते मनाम, सोने में कमी करना। और किल्लते इख्तिलात माल अनाम, लोगों से मेल जोल में कमी कर। किल्लते कलाम और किल्लते ताम, इस पे हमने गुफ्तगू मुकम्मल की पिछले 2-3 दिन से। किल्लते इख्तिलात माल अनाम पे गुफ्तगू, लोगों से मेल जोल में कमी करना। पिछले मजालिस में दो बातें जरूर बताई गई हैं कि जो चारों चीजों में किल्लत करना है ना, कमी करना, गुफ्तगू में, खाने में, सोने में, ये लोगों से मेल जोल में, ये इस्लाह का नुस्खा तो है ही सही। मगर अगर कुरान और हदीस देखी जाए तो ये सिर्फ इस्लाह पाने वालों के लिए नहीं, हर मुसलमान के लिए ये नुस्खा है। मगर इसके साथ साथ हमने ये बात भी कही कि इन चारों चीजों में कई मरतबा लोगों को जो समझ में नहीं आता, वो इख्तिलात माल अनाम है कि जी लोगों से मेल जोल में भी गुफ्तगू कर दी। तो क्या हम अपने बहन भाइयों से, वालदेन से, बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते? क्या मैं जॉब पे नहीं जा सकता? क्या रिश्तेदार बुलाएं तो मैं नहीं जा सकता? इख्तिलात वाल अनाम का मकसद है ये ही नहीं कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों से या जहां आपको जरूरत है उनसे ताल्लुक नहीं रख सकते। इख्तिलात का एक बड़ा ही मुनफरिद मकसद है, और ये मकसद भी कुरान और हदीस में वाज़ेह है कि ये जो इख्तिलात करना है, ये याद इलाही को हासिल करना है, कि कुछ वक्त फोकस करना है। जैसे इंसान जब तालीम हासिल करना चाहता है, कुछ वक्त कहता नहीं भाई यूनिवर्सिटी की तरफ तवज्जो है, बल्कि वालदैन कुछ मरतबा तो अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेज देते हैं कि जी पूरी अच्छी तरह से तालीम करके हासिल करके आ जाए, ताकि तालीम याफ्ता कहलाए। तो ये इख्तिलात भी टेम्पररी इख्तिलात है, लोगों से जो मेल जोल में कमी है कुछ वक्त की है। और इसका एक बड़ा मकसद है कि इस इख्तलात में से बैठ नहीं जाना किसी लोगों से दूर रहें, क्योंकि लोग अल्लाह से रुकावट है। नहीं, लोग अल्लाह से रुकावट नहीं है। आपके दिल में जो अल्लाह की याद अभी तक बैठी नहीं है, वो अल्लाह से रुकावट है। उसका नुस्खा यह है कि इंसान कुछ अरसे के लिए, जैसे कोई चीज, किसी खास चीज की तालीम हासिल करना चाहता है तो लोगों से अलग हो जाता है, किसी खास मनसब पे फायज होता है तो लोगों से अलग हो जाता है। इंजीनियर साहब आए हुए ना यहाँ पे, तो वो मेट्रो बना रहे हैं, तो अपने इलाके से यहाँ आए हुए हैं कि जी ये खास मकसद के लिए 1-2 साल के लिए आया हुआ हूँ यहाँ, ये कराची में मेट्रो बन जाएगी, इंजीनियर साहब वापस अपने इलाके चले जाएंगे। इख्तलात भी यही है कि जी इंसान हर चीज से हटकट के कुछ अरसे के लिए अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करे, और फिर उसके बाद जब ये दिल की याद और अल्लाह की याद इंसान के वजूद का हिस्सा बन जाए, तो फिर अब वो जहां भी जाए ये याद साथ है। और कल की मजलिस में हमने ये भी मिसाल दी कि जैसे चाय के अंदर इंसान चीनी मिलाता है, एक मरतबा चीनी मिल गई ना उस चाय में, अब आप चाय को कब लेंगे, इस कमरे में चले जाएं या उस कमरे में चले जाएं या घर से बाहर चले जाएं, चाय ने मीठी हो जाना है, चाय मीठी ही रहेगी। तो इसी तरह कोई शख्स कुछ वक्त के लिए इख्तिलात जो करता है, जो मशायख ने फरमाया, उसका मकसद भी यही है। इंसान कुछ वक्त हर चीज से हटकट के अल्लाह की याद को हासिल करे और उसके बाद फिर लोगों में आए, ऐसा करेगा तो फिर ऐसा करेगा तो फिर लोगों को भी अल्लाह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करवाने वाला बनेगा। तो ये तो कुछ रिकैप किया पिछले 2-3 दिन की जो इख्तिलात पे गुफ्तगू थी। आज की मजलिस की जो बात है वो ये है कि मशाइख ने एक कुलिया बयान किया है इस इख्तिलात के मामले में, कब इख्तिलात करना है। और वो कुलिया ये है कि मशाइख ने फरमाया कि अगर बुरी सोहबत है तो इख्तिलात बेहतर है, अकेले रहना बेहतर है, और अगर अच्छी सोहबत मुयस्सर है तो अकेले रहने से बेहतर ये है कि इंसान इस अच्छी सोहबत को इख्तियार करे। तो इख्तिलात से भी ज्यादा अफजल नेक सोहबत का हासिल होना है। और फिर इस नेक सोहबत में आने के बाद, शेख की खिदमत में आने के बाद, या किसी इसलाह करने वाले की खिदमत में आने के बाद, अगर उनसे इजाजत लेके ये कुछ अरसे के लिए ये इख्तिलात किया जाए, तो इंसान की तबीयत और हालात के मुताबिक शेख अगर इजाजत दे तो फिर ये इख्तिलात किया जाए। कई मरतबा हालात इजाजत देते नहीं है और इंसान ये गलती कर बैठता है। तो इख्तिलात कोई फर्ज और वाजिब नहीं है, ये इख्तलात जो है ये करके और अपना कारोबार भी डिस्टर्ब किया जाए। कई मरतबा बूढ़े बीमार वालदेन हैं और इंसान के मैंने इख्तलात करना है, कई मरतबा बच्चे छोटे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इख्तलात करने पे भी मशवरा जरूरी है, मगर इख्तलात से बेहतर नेक सोहबत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर नेक सोहबत मुयस्सर है तो इंसान नेक सोहबत की तरफ कदम बढ़ाए, किताब में लिखा है कि हजरत मौलाना फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुल्क के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख की सोहबत हासिल करने के लिए अपने इलाके मिस्कीनपुर शरीफ से पैदल सफर करके मूसा जई शरीफ जाते थे, एक सूबे से दूसरे सूबे में, और कम व बेश 300 मील का सफर था। अब 300 मील का सफर तय किया जा रहा है सोहबत यानी मुलाकात के लिए, तो अगर इख्तलात बेहतर होता तो ये तकलीफ बर्दाश्त पैदल सफर करके जाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब यह है कि नेक सोहबत के लिए नेक सोहबत जो है वो इख्तलात से बेहतर। इसलिए कई मरतबा शैतान इस नेक सोहबत से इंसान को रोकता है, मुख्तलिफ किस्म के उसके दिमाग में वसाविस डालता है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स दिमाग में डालता है, जब भी आजकल ये सारे काम कर रहा हूं ना, इसके बाद हजरत से मुलाकात करेंगे। और हमारे एक तो जानने वाले थे, उनसे पूछा गया कि जी आप शेख से मिलते क्यों नहीं है। उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त वजह बताई, उन्होंने कहा कि देखे वो इतने नेक हैं, मैं इतना बद हूं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं उनसे मिल सकूं, इसलिए मुलाकात ही नहीं करते। सुभान अल्लाह। तो शैतान कैसे कैसे माशाल्लाह एक्सक्यूजेस दिमाग में डालता है। तो इसलिए इख्तलात इस्लाह का नुस्खा है, मगर नेक सोहबत इस्लाह इख्तलात से ज्यादा अफजल है। नेक सोहबत जो है दिलों को बदलने वाली चीज है। अल्लाह के प्यारे महबूब का जब कौल सामने है, المرء على دين خليله، انسان اپنے دوست کی دین پر ہے، تو جس کے ساتھ صحبت رکھے گا جیسے صحبت ہوگی ویسا انسان کا دین ہوگا. اقتدار سے کئی گنا بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وقت گزار لیا جائے. اسی لیے بڑے بڑے اختلاط کرنے والوں کا یہ شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے ریا. کہ تھوڑی دیر کی اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اور یہ شعر کسی عام بندے نہیں، انہوں نے جنہوں نے خوب اختلاط کیا انہوں نے یہ شعر لکھا ہے، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے. تو اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ افضل ہے اختلاط. اور یہ اختلاط بڑے بڑے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی چیز ہے. زازان رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ بڑے عالم گزرے ہیں، تابعین میں سے تھے، صحابہ اکرام کے زمانے کے تھے. ابتدائی زندگی غفلت والی تھی، گانا بجانا کرتے تھے، آواز بڑی خوبصورت تھی، لوگ بڑا گانا ان کا سنتے تھے، یعنی جو لوگ اس طرح کی طبیعت کے تھے، اور ساز ایک بجاتے تھے وہ ساز بھی بڑا خوبصورت بجاتے تھے، لوگ بڑی محفل جماتے تھے گانے بجانے کی. مگر نیکی کا دور تھا اور بہت سارے لوگ یہ غلطی کرنے والے، یہ گناہ کرنے والے نہیں تھے، مگر بہرحال ان کو سننے والے مل جاتے تھے. تو کیونکہ خود بھی شوق تھا اور لوگ بڑی واہ واہ کرتے تھے تو ان کو بڑا پسند بھی آتا تھا، مگر سمجھتے تھے کہ جی غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے نیکوں سے بڑا دور رہ کے یہ کام کرتے تھے. ان کا دل چاہتا تھا کہ کوئی نیک شخص جو ہے میرا یہ گانا بجانا نہ دیکھ لے، بس جو اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ ہی دیکھے اس کو. تو ایک مرتبہ گا بھی رہے تھے، بجا بھی رہے تھے، محفل بڑی گرم تھی، لوگ بھی واہ واہ کر رہے تھے. گاتے گاتے دیکھتے ہیں کہ قریب سے کوئی بڑے بزرگ اللہ والے قریب سے یوں گزر کے جا رہے ہیں، ساری توجہ ان کی طرف ہو گئی، پریشان ہو گئے کہ جی میں تو بہت بچ کے کرتا تھا، یہ بزرگ بالکل قریب سے یہاں سے چل کے جا رہے ہیں، تو شرم بھی آ رہی تھی کہ ان کے سامنے یہ کر رہا ہوں. چلتے چلتے وہ بزرگ رک بھی گئے، تو یہ اور پریشان ہو کے رک کیوں گئے ہیں، کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو یہ بھی پریشان ہو گئے کہ تو بڑے ناراض ہو رہے ہوں گے مجھے کوئی بدوائی نہ دے رہے ہوں. اتنے پریشان ہوئے کہ آخر کو سارے لوگوں سے کہا کہ بھئی آج یہ محفل ختم ہے، آپ جائیں، پھر اللہ نے موقع دیا تو سنائیں گے آپ. لوگ اٹھ گئے، اور یہ اٹھ کے گئے وہ کونے والے بندے کے پاس کہ جی یہاں سے بزرگ جا رہے تھے، یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا اوئے ہوئے 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 اللہ، میں تو کسی نیک آدمی کے سامنے یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، چلے جائے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے کر رہا ہوں. تو بڑے پریشان ہوئے، پوچھا کچھ کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے میرے بارے میں، کچھ کہہ رہے تھے؟ کہنے والے نے کہا ہاں آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ فرما رہے تھے کہ کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہوتی. یہ اللہ والوں کا ایک جملہ، اس جملے نے دل کو نرم کر دیا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. پوچھا کہاں ہوتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود؟ فرمایا فلاں جگہ رہتے ہیں. چلے گئے حضرت کے گھر پہ، دستک دی، حضرت بات تشریف لائے تو اپنا تعارف کروایا کہ حضرت میں وہ گناہگار گانے والا جس کی محفل کے قریب سے آپ گزرے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہوتی، آج آپ کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں. कि अब ये आवाज सिर्फ अल्लाह के कुरान के लिए इस्तेमाल। तो नेक सोहबत को करीब से गुजर जाना भी अल्लाह अकबर, दिलों को कैसे बदलता है, पूरी जिंदगी बदल गई। आलिम दीन बने, अल्लाह वाले बने, तारीख उनको जाजान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते। तो ये नेक सोहबत ये इख्तिलात से अफजल है। अल्लाह ताला हमें नेक सोहबत भी अता फरमाए, इस्लाह नफ्स भी नसीब फरमाए। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.